सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के लिए मेरे पास एक बहुत ही नया सा सब्जेक्ट है, टॉपिक कहना चाहिए, लेकिन मैं उसकी घोषणा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, क्योंकि यह लग रहा है कि जो दूसरी खबरें हैं कहीं उन खबरों में इतना वक्त न चला जाए कि उसके लिए फिर पर्याप्त समय ही न बच पाए। मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा प्रिय विषय है, तो उसे शॉर्ट तरीके से बताने में मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, तो लेकिन देखिए चले आगे क्या होता है, अगर आज नहीं तो कल से ही, कल नहीं तो परसों से ही, लेकिन उसे लेंगे जरूर। तो आइए पहले जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना होगा और बाकायदे अखबारों में भी, हालांकि थोड़ी सी जगह मिली है क्योंकि ये जनरुचि का विषय नहीं है, टॉपिक नहीं है, या कह लीजिए खबर नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसे थोड़ी सी जगह मिलेगी, लेकिन रेडियो में ये बहुत ही प्रोमिनेंटली न्यूज में थी। न्यूज क्या है कि सरकार ने, कैबिनेट ने कहना चाहिए, कैबिनेट जब हम कहते हैं तो आप सरकार कह लीजिए, है ना, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कैबिनेट क्या होती, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, कैबिनेट ही सरकार होती है, वो निर्णय लेती है। और देखिए निर्णय दो तरीके से होते हैं, या तो संसद निर्णय लेती है यानी कि कानून बना करके, या फिर कैबिनेट सीधे सीधे निर्णय ले लेती है। तो अभी कैबिनेट ने निर्णय लिया है और पहले से जो एक्ट मौजूद रहते हैं या तो कैबिनेट उसी के तहत ही निर्णय ले लेती है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। और अगर किसी के लिए एक्ट बनाना जरूरी है, अगर वो संवैधानिक मामला है या उस पर कोई एक्ट बना हुआ है और कोई नई चीज लाई जा रही है, तो फिर बात अलग है, अदरवाइज कैबिनेट अपने आप में निर्णय लेने में सक्षम है, ये संवैधानिक जो हमारा प्रावधान है आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, उसने निर्णय लिए हैं कि 3 नए सहकारी संघ बनाए जाएंगे, मल्टी स्टेट लेवल सहकारी संघ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां कह लीजिए। वो 3 क्या है, बस नाम ध्यान से सुनिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये किस लिए बनाए जा रहे हैं, बस ध्यान से सुनिएगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, निपटा देने के लिए प्लीज मत सुनिएगा, राइट। इस तीनों के तीनों जो हैं वो नेशनल लेवल के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, ठीक है। एक है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, समझ में आ गया, नेशनल लेवल है तो नेशनल, कोऑपरेटिव तो सहकारी है ही है, एक्सपोर्ट यानी कि ये एक्सपोर्ट को देखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं वो जो भी प्रोड्यूस करती हैं, जिन वस्तुओं का भी उत्पादन कर रही हैं, जो कुछ भी वो तैयार कर रही हैं, इस समिति की जिम्मेदारी होगी कि देखे कि कैसे इन सामान का, इन उत्पादों का निर्यात किया जा सके, ठीक है। जो दूसरी समिति है वो भी नेशनल लेवल है, नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अलग से बना दिया गया है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए ये बनाया गया है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके रेट बहुत हाई होते हैं, लगभग लगभग 1.5 से 2 गुना उसके रेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी गोभी 20 रुपए किलो बिक रही होगी सामान्य, तो पता लगा कि जो ऑर्गेनिक है वो 35-40 रुपए बिक रही होगी, 30 रुपए से कम तो नहीं होगी, तो लोग उसे खरीदने से हिचकिचाते हैं। लोगों को यह भी भरोसा नहीं होता कि भैया ये ऑर्गेनिक है भी कि नहीं है, कहीं ऐसा नहीं तो झूठ बोल करके बेचा जा रहा हो, तो बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारे हेल्थ की दृष्टि से, जमीन के हेल्थ की दृष्टि से ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान रहे हैं कि कैसे सरकार धीरे धीरे कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाह रही है। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है जो इनका विपणन देखेगी कि कैसे इनकी मार्केटिंग की जाए। इसके बाद अब तीसरी देखिए क्या है, वो भी नेशनल लेवल है, नेशनल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी, सीड ये बीजों का काम देखेगी कि लोगों को कैसे अच्छे बीज उपलब्ध करा जाए, हमारी जो सोसाइटीज हैं इन सबको कैसे दिया जा सकता है, इसका काम देखेगी। तो ये 3 नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं। आपको मालूम है कि लगभग लगभग हमारे यहां 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, कम नहीं है, 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, कितने किसान, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो 3 सोसाइटियां काम करेंगी, तो आपको नहीं लगता कि जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हम निर्यात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं तो हमारे किसानों को उसकी कीमत भी अच्छी मिल सकेगी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों तक वो पहुंच सकेंगी, क्योंकि मार्केटिंग तो बहुत जरूरी है, तो ये सोसाइटीज करेंगी। तो इस तरीके से ये कह लीजिए कि जो कृषि क्षेत्र है हमारा, कृषि क्षेत्र की दिशा में उठाया गया ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अपडेट आपको कर लेना चाहिए अपने इस टॉपिक को। दोस्तों एक खबर और है कि जातिगत जनगणना के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, आपको याद होगा कि बिहार सरकार ने कराना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और उसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की जनगणना करा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी के आधार पर यह याचिका स्वीकार कर ली है और इसकी सुनवाई की जाएगी। प्रायोरिटी के आधार पर इसलिए किया जाना था कि बिहार में तो शुरू हो गया है, अगर उसमें बहुत डिले करेंगे तो पता लगेगा कि वहां तो जातिगत जनगणना पूरी हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बिहार सरकार अभी जातिगत जनगणना करा रही है वो पूरी तरह से असंदिग्ध नहीं है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, सरकार क्या निर्णय लेती है। और आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर खूब विवाद हुई थी, खूब बहस चली थी, लेकिन अभी तक कोई फाइनल स्थितियां नहीं आ पाई हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से जो स्थितियां हैं वो बहुत स्पष्ट हो सके। अब आप देखिए कि बिहार सरकार ने एक डिसीजन लिया, बिहार की विधानसभा ने डिसीजन लिया, चीफ मिनिस्टर अगर डिसीजन ले रहे हैं तो राइट। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर हो सकता है कि रोक लगा दे। दोस्तों ज्यादातर मामलों में ये होने लगा है। केंद्र के मामलों में भी आप देखिए कि जो लोग कोई भी वो केंद्र सरकार निर्णय लेते, कोई भी तो निर्णय नहीं लेकिन जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण से निर्णय होते हैं जो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए जान पड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी जाती है और मामला गड़बड़ हो जाता है। आपको यह मालूम है कि अभी हमारे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी का मतलब है जो विधानसभा है, जो विधानमंडल है, जो हमारी लोकसभा है, जो हमारी राज्यसभा, इसके चेयरमैन स्पीकर, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बैठक हो रही है। इस बैठक में हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, अब यहां उन्हें उपराष्ट्रपति कहना ठीक नहीं होगा, यहां हम कहेंगे राज्यसभा के सभापति, हमें यह कहना चाहिए राज्यसभा के सभापति ने, क्योंकि पीठासीन अधिकारियों की बैठक हो रही है ना, तो वहां वो जो बोल रहे हैं उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में बोल रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए कि कैसे इस संकट का समाधान ढूंढा जाए, क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई संसद कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है, कई कानून ऐसे हुए हैं। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि क्या संसद का बनाया कानून तभी कानून बनेगा जब कोर्ट की उस पर मोहर लग जाएगी, क्या किया जाए। संसद कानून पारित करती है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, वो कानून बन जाता है, इसके बाद जनहित याचिका दायर हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है। इसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है कि फिर क्या किया जाए, क्या राष्ट्रपति के बाद उसे, आप कह लीजिए, कहने का अर्थ हो सकता है कि जुडिशरी के पास भेजा जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास, जब वो मोहर लगा दे तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाए, या संविधान में ये प्रोविजन कर दिया जाए कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए, क्या किया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण ये संकट है जिससे अभी हमारे देश का संविधान जूझ रहा है, आप कह लीजिए, क्योंकि कार्यपालिका और जो विधायिका होती है उनके बीच में जो टकराव होते हैं उन्हें तो आपस में वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर विधायिका और न्यायपालिका में इस तरह के टकराव की स्थिति आ जाए तो इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैनेज शब्द निगेटिव सेंस में नहीं, मतलब इनके बीच में संतुलन बनाना फिर लगभग बहुत कठिन काम हो जाता है और यही हमें अभी भारत में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर आपको अपना स्टैंड तैयार कर लेना चाहिए। और खासकर इसी संदर्भ में मैं एक बात और कहूंगा कि आज मैं राजदीप सरदेसाई का आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें उन्होंने खासकर राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच में जो टकराव की स्थिति होती है उस पर बात की है और उसकी शुरुआत उन्होंने खासकर दिल्ली के संदर्भ में की है कि दिल्ली में उपराज्यपाल हैं और इसके बाद वहां निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं तो उनके बीच में किस तरह से लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो यहां जुडिशरी तो नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरी सत्ता तो है, तब सवाल यह उठता है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनसे जो बनी हुई संस्था है वो महत्वपूर्ण है या फिर सरकार द्वारा जो नामित अधिकारी हैं या कह लीजिए राज्यपाल या उपराज्यपाल हैं वे महत्वपूर्ण हैं। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार करने की जरूरत है। दोस्तों मिश्रा समिति के बारे में मैंने आप लोगों से एक या दो दिन पहले बात की थी, खासकर जोशी मठ के संदर्भ में कि 1976 में जोशी मठ के आसपास जो बहुत ज्यादा निर्माण कार्य हो रहे थे उस पर पूरे आप यूं कह लीजिए कि आसपास जो स्थितियां बन रही थी उस पर एक समिति बनाई गई थी 1976 में, उसका नाम ही था मिश्रा समिति। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसकी थोड़ी सी बातें मैं आप तक रखना चाह रहा हूं, ताकि आपको पता लग सके कि समितियां कैसे व्यावहारिक रिपोर्ट देती हैं, इसके बावजूद जो सरकार है वो क्यों नहीं सुनती है, और अगर नहीं ही सुनना है तो फिर समितियां बनाती क्यों है, एक प्रश्न तो है, बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। उसने सीधे सीधे कहा था कि जोशी मठ के आसपास जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो भारी निर्माण चल रहे, छोटे मोटे नहीं, जो भारी निर्माण चल रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं सुना गया। इस समिति ने ही यह बताया था कि ये जो जोशी मठ है ये बेसिकली रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है, ये कोई चट्टान पर स्थित नहीं है। याद कीजिए कि मैंने शुरू शुरू में आपसे मोरेन के बारे में बात की थी, वो चट्टान पर शहर नहीं बसा है। चट्टान पर अगर बसा होता तो उसमें थोड़ी सी मजबूती होती, लेकिन ये तो रेत और पत्थर पर बैठ बसा हुआ है, उसका नतीजा क्या होगा? अब वो धसक रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो तो स्खलित होंगे, तो वही अब भूस्खलन की स्थिति आ रही है। और बकायदे उस समय ये कहा गया था कि कोशिश की जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, ज्यादा से ज्यादा घास लगाने का अभियान चलाया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो मिट्टी का कटाव है वो कम होता है, है ना, जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध करके रखती हैं। उन्होंने ये कहा था कि ढलानों पर जो खेती की जाती है वो खेती न की जाए, क्योंकि उससे मिट्टी का कटाव होता है। जो नाली प्रणाली है पानी के बहने का, उसे पक्का किया जाए ताकि उसके साथ मिट्टी बह करके न जा सके। जो सीवर लाइन है उसके साथ पानी को निकालने की व्यवस्था की जाए। रिसाव से बचने के लिए उन्होंने कहा कि कहीं भी पानी को जमा न होने दिया जाए, पानी आ जा सके नालियों का निर्माण किया जाए, और जितनी भी दरारें पड़ती हैं, कहीं कहीं अगर दरार दिखाई भी दे रही है तो उन दरारों को चूने से या जो स्थानीय मिट्टियां होती हैं उनसे या रेत से भर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उसके परिणाम आज हमारे सामने मौजूद हैं। तो दोस्तों अब तो वक्त खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, अपन जिस पर बात करना चाह रहे थे उस पर कल हम लोग बात करेंगे, यदि संभव हो सका तो, नहीं तो आगे बात करेंगे, उसका संबंध बिल्कुल करंट अफेयर से नहीं है, आप निश्चिंत रहें। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में तो आज कुछ भी नहीं है, खबरों के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, पांडुरंग घुगे परभड़ी महाराष्ट्र से, सुनीता सोमरवाल, अनिल कुमार सोलंकी मध्य प्रदेश से, शशि लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और अंश सविता कानपुर से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, नमस्कार।